ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली की रोज एवेन्यू अदालत ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी। भारतीय वायुसेना की 29 अग्निवीर वायु महिलाएं पहली बार करगिल विजय दिवस पर इंडिया गेट परिसर में ड्रिल टीम बनाने के लिए एक साथ आएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इंडिपेंडेंट एंड पार्टीशन स्टडीज के ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का डिजाइन विभाग शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम बीटेक इन डिजाइन की शुरूआत करेगा। दिल्ली के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर अधिकारियों को खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सही वजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। श्री केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। इससे पहले जुलाई के शुरू में सर्वोच्च न्यायालय ने आबकारी नीति को लेकर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर धनशोधन मामले में 12 जुलाई को श्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में रहे क्योंकि उन्हें कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा अलग से गिरफ्तार किया गया था। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी 30 जुलाई को राजधानी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज एक प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर मुख्यमंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं। मंत्री आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि जेल के अंदर मुख्यमंत्री केजरीवाल के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मंत्री आतिशी ने बजट 2024-25 पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में दिल्ली वालों के लिए कोई विशेष लाभ नहीं दिया है।
दिल्ली के लोगों ने 2,60,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिया, लेकिन जब बजट के आंकड़े सामने आए तो जो दिल्ली के लोगों की डिमांड थी कि मात्र 5% हिस्सा दिल्ली वालों को मिलना चाहिए, यानी 5,000 करोड़ दिल्ली की सरकार को मिलना चाहिए शेयर इन टैक्सेस, तो दिल्ली वालों को इस पर निराशा मिली और दिल्ली वालों को कुछ भी शेयर इन टैक्सेस इस बजट में नहीं मिला।
संसद के दोनों सदनों में आम बजट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट पर आज चर्चा फिर शुरू हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज विपक्षी नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने देश के जनादेश का अपमान किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश चाहता है कि बजट पर एक सार्थक चर्चा हो, लेकिन कुछ दलों के नेताओं की टिप्पणी और भाषण से सदन की गरिमा गिरी है।
कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। दो चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से जनादेश का सम्मान करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि चुनाव खत्म हो गए हैं और अब विकसित भारत की दिशा में काम करने और केंद्रीय बजट पर रचनात्मक चर्चा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं ने बजट पर कुछ नहीं कहा, वे सिर्फ राजनीति करते हैं। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि बजट का लक्ष्य भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और इस बजट में महिलाओं, किसानों के साथ साथ रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटन का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक विजेन्द्र गुप्ता ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार ने दिल्ली के 6वें वित्त आयोग का गठन नहीं किया है। श्री गुप्ता ने यह भी कहा है कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 6वें वित्त आयोग का गठन वर्ष 2021 में किया जाना था, लेकिन यह अभी तक गठित नहीं हुआ है। श्री गुप्ता ने बताया कि इस मामले को लेकर वह जल्द ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगे। दिल्ली भाजपा ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक पत्र लिखकर दिल्ली नगर निगम में अनुसूचित जाति महापौर की नियुक्ति के साथ ही छठे दिल्ली वित्त आयोग के गठन की मांग की है। दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि यह खेदपूर्ण है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की हठधर्मी के चलते दिल्ली में अनुसूचित जाति का महापौर नियुक्त नहीं हो पा रहा है और भाजपा इसकी निंदा करती है। भाजपा नेता ने कहा कि दिल्ली नगर निगम एक्ट में तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति के महापौर की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन अपने महिला तथा दलित विरोधी स्वभाव के लिए जाने जाने वाले अरविंद केजरीवाल महापौर चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होने दे रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर अधिकारियों को खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सही वजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश मंत्री हुसैन ने मापतौल विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। श्री हुसैन ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उपभोक्ताओं को सही कीमत पर उचित उत्पाद मिलने चाहिए। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नया कार्यालय आवंटित होने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि उनकी पार्टी पिछले 10 वर्ष से कार्यालय आवंटन के लिए योग्य है और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के नाते उसे एक और कार्यालय मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उनके कार्यालय को लेकर साजिश करती रही और उनका लक्ष्य आम आदमी पार्टी को सड़क पर लाना था।
देखिए 2014 में पहली बार हमारी सरकार बन गई, हम लोग स्टेट पार्टी बन गए। एक स्टेट पार्टी होने के नाते भी हम 10 साल से क्वालिफाइड हैं कि हमें एक स्टेट के अंदर दफ्तर मिले। आज हम नेशनल पार्टी हैं, हम एक और दफ्तर के लिए क्वालिफाई करते हैं नेशनल पार्टी होने के नाते, वो भी नहीं दिया जा रहा था। ये तो एक बहुत सामान्य शिष्टाचार है राजनीति के अंदर। इतनी शुचिता तो चाहिए थी कि आप एक पार्टी को उसका ऑफिस एलोकेट कर दें, उसके लिए भी अगर हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज CIPS के ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी ने कहा कि देश के विभाजन का संबंध केवल 1947 से नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें इतिहास में सैकड़ों वर्ष पीछे दिखाई पड़ती है। उन्होंने कहा कि सेंटर का उद्देश्य स्वाधीनता और विभाजन की त्रासदी से संबंधित अनेक आयामों पर गहन शोध करना है। श्री टेकचंदानी ने कहा कि जब हम विभाजन पर दृष्टि डालते हैं तो प्रभाव सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और दूसरे अनेक विमर्शों से जुड़े हुए हैं। CIPS के निदेशक प्रोफेसर रविन्द्र कुमार ने इस दौरान सेंटर के लिए अलग अलग विषय विशेषज्ञों के सहयोग का आग्रह किया। भारतीय वायुसेना की 29 अग्निवीर वायु महिलाएं पहली बार पूरी तरह से महिला ड्रिल टीम बनाने के लिए एक साथ आएंगी। टीम 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस पर इंडिया गेट परिसर में प्रदर्शन करेगी। भारतीय वायुसेना ने नागरिकों को एक प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है, जो वायुसेना बैंड के साथ ताकत, एकता और नई जमीन तोड़ने का प्रतीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का डिजाइन विभाग शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में एक नए 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम BTech इन डिजाइन की शुरूआत करेगा। संस्थान ने सूचित किया है कि यह अनूठा कार्यक्रम है जो विशेष रूप से रचनात्मक लोगों के लिए तैयार किया गया है। इसका आसपास की सामाजिक तकनीकी प्रणालियों को समझने और इन प्रणालियों की समस्याओं का समाधान निकालने का उद्देश्य है। डिजाइन विभाग की HOD प्रोफेसर ज्योति कुमार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि IIT दिल्ली से BTech इन डिजाइन में डिग्री लेने के बाद छात्र उद्योग, शिक्षा, सरकार, परामर्श और उद्यमिता में नेतृत्व करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह कार्यक्रम छात्रों को विविध करियर अपनाने के लिए पर्याप्त विकल्प और स्वतंत्रता प्रदान करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद पर अपने 2 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय के 9वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाया। छात्रों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने आधुनिक दौर की विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की। राष्ट्रपति ने छात्रों से लोगों को इन समस्याओं के बारे में आगाह करने और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में योगदान देने के लिए भी कहा।
हम जो कभी कभी इसे देखा जाता है कि जागरूकता नहीं होने के कारण टैप को भी खोल देते हैं, खोल के छोड़ देते हैं, तो पानी वेस्ट होता है। कभी कभी हम इतने जरूरत से ज्यादा नहाने के टाइम शावर खोल दो, जरूरत से ज्यादा नहा लो, जरूरत से ज्यादा पानी को हम बर्बाद करते हैं। और कभी कभी हम पीने का पानी में भी हाथ धो लेते हैं, कभी कभी पीने के पानी में हम बर्तन साफ कर लेते हैं, तो फिर वो पीने का पानी पीने में ही यूज होना चाहिए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर और मुस्तफाबाद विधानसभा के गांवों में 5 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के गांवों के विकास से संबंधित कार्यों के लिए सरकार ने 900 करोड़ रुपए का बजट रखा है। श्री राय ने बताया कि राजधानी को हरित शहर बनाने की दिशा में सरकार ने 5 वर्ष के दौरान 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसे समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह कार्य सरकार की 20 से अधिक एजेंसियों द्वारा किया गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हाल में हुई बस दुर्घटनाओं का संज्ञान लेते हुए विशेष परिवहन आयुक्त को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जांच रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का आदेश दिया। रिपोर्ट में ऐसी घटनाओं के कारणों के साथ साथ भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपाय भी बताने के लिए कहा गया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा है कि लोक अदालतें हमारे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि लोक अदालतें न्यायालयों के बाहर विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में न्यायमूर्ति खन्ना ने लोगों को सलाह दी कि वे इस महीने की 29 तारीख से 3 अगस्त तक होने वाली आगामी विशेष लोक अदालतों की सेवाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई की सुविधा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम दूतावास का दौरा किया। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम की केंद्रीय समिति के महासचिव गुएन फू ट्रोंग को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका पिछले सप्ताह हनोई में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हनोई में गुएन फू ट्रोंग के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और वियतनामी राष्ट्रपति टू लाम, प्रधानमंत्री फाम मिन चिन और शोक संतप्त परिवार को व्यक्तिगत रूप से भारत की संवेदना व्यक्त की। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कल शाम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद श्री मोदी ने कहा कि भारत ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने परस्पर लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की तत्परता का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री के रूप में पहली भारत यात्रा में श्री लैमी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बातचीत में भारत ब्रिटेन वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 के दौरान सहमत रोडमैप 2030 की भी समीक्षा की गई। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उसमें अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और ब्रिटेन का मिलकर काम करना आवश्यक है।
We are both countries which have a big global presence in different ways. So I think it's also important that India and the UK work together on global issues and in global platforms.
राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की राउज रेवेन्यू अदालत ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी। भारतीय वायुसेना की 29 अग्निवीर वायु महिलाएं पहली बार करगिल विजय दिवस पर इंडिया गेट परिसर में ड्रिल टीम बनाने के लिए एक साथ आएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इंडिपेंडेंट एंड पार्टीशन स्टडीज के ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिल्ली के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर अधिकारियों को खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सही वजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।